नमस्कार भारत, शनिवार 24 अप्रैल, मैं हूं निखिल रंजन। पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे झारखंड। जेएमएम और कई संगठनों ने किया है बंद का आह्वान।
झारखंड सरकार ने अस्थायी नीति का जो परिभाषित किया है, ये बिल्कुल झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के हित में नहीं है।
यूरोपीय संघ ने शरणार्थियों के मसले पर तुर्की की तारीफ की, तो दाउदोग्लू ने मांगी बगैर वीजा यूरोप आने की सुविधा। सलमान खान को ओलंपिक संघ ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर, तो नाराज हुए पहलवान योगेश्वर दत्त। बीबीसी न्यूज मेकर्स में खास मुलाकात दीपा कर्माकर और उनके कोच से।
पूरे वर्ल्ड में ये पांच ही लोग पड़ते सिर्फ, और पांच में से मैं वो तीसरी लड़की हूं जिसने इस वर्ल्ड में लैंड आया।
अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और देशभर की पंचायतों के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा का विरोध किया है और बंद का आह्वान किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य की भाजपा सरकार के मूल निवासी नियम का विरोध कर रही है, जिसके तहत झारखंड में पिछले 30 साल या उससे ज़्यादा समय से रहने वाले नागरिकों को वहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने संबंधी आशंकाओं पर चिंता जाहिर की है। ब्रिटेन की यात्रा पर पहुंचे ओबामा ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि अगर ब्रिटेन यूरोपीय संघ छोड़ता है तो उसे अमरीका के साथ व्यापारिक समझौते करने में दसियों साल लग सकते हैं। ब्रिटेन में इस संबंध में जून में जनमत संग्रह होने जा रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी की रेस में शामिल हिलरी क्लिंटन ने भी बराक ओबामा की बात से सहमति जताई है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि अगर अमेरिका दक्षिण कोरिया में अपने सालाना सैन्य अभ्यास को बंद कर दे तो वह अपने परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा देगा। उत्तर कोरिया का यह बयान तब आया जब इसने पनडुब्बी से एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि अगर मिसाइल परीक्षण की पुष्टि हो जाती है तो ये संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का घोर उल्लंघन होगा। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वैसे मिसाइल परीक्षण पूरा नहीं हुआ है और रॉकेट केवल कुछ ही मिनटों के लिए उड़ान भर सका। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीरिया में एक बार फिर तेज होते संघर्ष पर चिंता जाहिर की है। सीरियाई शहर अलेप्पो में पिछले कुछ दिनों से हवाई हमलों में खासी तेजी देखी जा रही है। ओबामा ने कहा कि वो सीरिया में शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र संघ के दूत स्टेफान डे मिस्टूरा ने कहा,
According to all objective criteria, comparing to the past and
पहले की तुलना में बीते कुछ दिनों से हमलों में खासी कमी है। दोनों ही पक्षों ने संयम बरता हुआ है और युद्ध विराम अब भी प्रभावी है, लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने फौरन कदम नहीं उठाए तो युद्ध विराम खतरे में पड़ सकता है। ये थे सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के दूत स्टेफान डे मिस्टूरा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इक्वाडोर के राष्ट्रपति रफाइल कोरेया ने कहा है कि एक सप्ताह पहले आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या 646 हो गई है। राष्ट्रपति के मुताबिक 130 लोग अब भी लापता हैं। उन्होंने राहत और बचाव कार्य में मदद देने वाले कई देशों की सराहना की और कहा है कि 100 से ज़्यादा लोगों को मलबे से जिंदा बचा लिया गया है। पिछले शनिवार को 7.8 तीव्रता के आए भूकंप ने इक्वाडोर में तबाही मचा दी थी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन। खबरों की शुरुआत करते हैं भारत से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के जमशेदपुर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बीच प्रमुख विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज ही कोल्हान प्रमंडल बंद का आह्वान किया है। उधर कई दूसरे आदिवासी मूलवासी संगठनों ने भी अलग से संपूर्ण झारखंड बंद करने का फैसला किया है। बंद का ऐलान करने वाले दल और संगठन राज्य में स्थानीय नागरिकों के बारे में तय की गई नीति से नाखुश हैं। रांची से नीरज सिन्हा की रिपोर्ट सुनिए।
पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन के जरिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय से भारत उदय अभियान को सशक्त बनाना चाहते हैं। झारखंड सरकार ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा कहते हैं,
यहाँ पर हम लोग को अब स्टेज से लेकर के लोगों को डेलीगेट्स को हमको लाने ठहराने का भी हम लोगों ने तैयारी किया है, दूसरे स्टेट से भी लोग आ रहे हैं उसको ठहराने का अच्छी तरह से हम लोग तैयारी, और प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है इससे काफी लोग उत्साह है, पंचायत स्तर से लोग उत्साह है, खास करके झारखंड प्रदेश के जो प्रतिनिधि है जो डेलीगेट्स है वो काफी उत्साह महसूस कर रहे हैं।
झारखंड में बीजेपी की सरकार ने हाल ही में स्थानीय नीति को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत 30 साल से झारखंड में रहने वालों को स्थानीय माना जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत कई आदिवासी मूलवासी संगठन इस फार्मूले का विरोध कर रहे हैं। इन दल और संगठनों का जोर है कि जिनके पास अपने या पूर्वजों के नाम जमीन आदि का खतियान है उन्हें ही स्थानीय माना जाए और सरकारी नौकरियां दी जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दशरथ गगराई कहते हैं,
जैसे अभी झारखंड सरकार ने स्थायी नीति का जो परिभाषित किया है ये बिल्कुल झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के हित में नहीं है कि यहाँ के झारखंड के आदिवासी और मूलवासी झारखंड के अंतिम सर्विस सेटलमेंट जो हुआ है उसी को आधार मानते हुए स्थानीय नीति का परिभाषित हो इसका मांग रखा गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री का विरोध किए हैं और उसी का आधार पर ही कोल्हान में 24 तारीख को बंदी का ऐलान भी हुई है।
गौरतलब है कि आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच इस मुद्दे पर लगातार आंदोलन की राह पर है। अब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दिन बंद को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक सह प्रवक्ता एसएन प्रधान बताते हैं,
हम लोगों ने एहतियात के तौर पर जो भी कार्रवाई वीआईपी सिक्योरिटी का है वो तो किया ही है, बल्कि बंद के मद्देनजर भी पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय किया गया है और ये हिदायत दी गई है कि जो भी कानूनन कार्रवाई है वो किया जाए ताकि डिस्ट्रप्शन नहीं हो, हाईवे ब्लॉक न हो।
इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि
यहाँ के लोगों की जो अपेक्षा थी सरकार से वो पूरा नहीं हुई है, तो इस मामले को लेकर के हम लोगों ने बंद बुलाया है और बंद बुलाने का मुख्य कारण है कि हम प्रधानमंत्री को पार्टी की भावना से अवगत कराना चाहते हैं।
जबकि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस फैसले पर कड़ा एतराज जताया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम मित्तल कहते हैं,
मुख्यमंत्री के द्वार खुले हुए हैं, राज्यपाल के द्वार खुले हुए हैं, प्रधानमंत्री के यहाँ उन लोग और भी माध्यम है मैसेज भेजने के, लेकिन ये इस दिन इतने बड़े कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम है और उस दिन इस ढंग का आयोजन करना यह निश्चित रूप से उनकी मानसिकता को दर्शा रहा है जो किस मानसिकता से ग्रसित है और वो केवल इस नाम से राजनीति करना चाहते हैं। वास्तव में झारखंड के विकास से, गांव के विकास से, गरीब के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है।
बहरहाल स्थानीय नीति के बहाने झारखंड मुक्ति मोर्चा की यह राजनीति कितना असरदार साबित होता है यह देखना बाकी होगा। नीरज सिन्हा, बीबीसी रांची।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ, और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। नेपाल में भ्रष्टाचार के कथित मामले में गिरफ्तार किए गए वरिष्ठ पत्रकार कनक मणि दीक्षित को तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन की क्या दलील है इस गिरफ्तारी पर? कनक मणि दीक्षित वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हें कल गिरफ्तार किया गया था, और उनका क्या पक्ष है? ये पूरा मामला कहाँ से कैसे शुरू हुआ? काठमांडू से वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमरे इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर साथ में हैं। युवराज, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये बताइए कि ये जो गिरफ्तारी हुई है कनक मणि दीक्षित की, इस वक्त उनकी क्या स्थिति है और वो कहाँ हैं?
अभी कनक को हाई ब्लड प्रेशर और इरेगुलर हार्ट बीट होने के कारण कल से वीर अस्पताल, जो नेपाल का यहाँ का सबसे पुराना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है। और चूंकि आज संडे है, आज वर्किंग डे था, लेकिन भूकंप का एक साल होने के कारण आज भी छुट्टी है, इसलिए शायद ज्यादा इस जो आगे की तहकीकात होगा वो कल से ही शुरू होगा, लेकिन हेल्थ कंडीशन में डिपेंड करेगा।
युवराज, ये बताइए कि जो ये पूरा मामला है, किस बात को लेकर के उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन पर क्या आरोप क्या लगे हैं?
अब ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग है जो एंटी ग्राफ्ट या जो अख्तियार की दुरुपयोग और करप्शन दो मामले में कोई सार्वजनिक पद धारण करने वाला व्यक्ति को अगर ये दो मामला में छानबीन करने की जरूरत होगी, तो अख्तियार मतलब उस आयोग के जुरिस्डिक्शन में केवल दो व्यक्ति आते हैं, निजी व्यक्ति नहीं आते हैं, नहीं, चूंकि कनक एक पत्रकार के साथ साथ वो एनजीओ में, सिविल सोसाइटी में भी है, और कुछ फिलान्थ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ वो एक साझा यातायात, यानी कि एक गवर्नमेंट के तहत का कॉरपोरेशन है, उसके संचालक समिति में भी है। उस हैसियत में उनको बुलाया है अख्तियार के जो लेटर इश्यू हुआ है, क्योंकि और किसी हैसियत में उनको उपस्थित नहीं कराया जा सकता है आयोग के समक्ष। और उसमें उस परचेज में जमीन, जो साझा यातायात की जमीन के कुछ ट्रांजेक्शन है उसमें इरेगुलरिटीज है इसे कहा गया है, लेकिन उसके डिटेल्स में यह है। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे केसेस भी, बीबीसी बैंक में अकाउंट होना, उसमें शेयर होना, ये सब चीज आए हैं उनके गेम्स में। लेकिन अब यहाँ ज्यूरिस्डिक्शन को लेकर पब्लिक डिबेट शुरू हुआ है, और कनक का ये मानना है क्योंकि चूंकि उन्होंने जो अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के चेयरमैन के अपॉइंटमेंट, लोकमान सिंह कार्की की अपॉइंटमेंट का विरोध किया था, इसलिए व्यक्तिगत रिश्वी के कारण या बदला प्रतिशोध की भावना के साथ उनको गिरफ्तार किया गया है, ऐसा उन्होंने कहा है हॉस्पिटल से और अरेस्ट होते ही।
काठमांडू से युवराज घिमरे, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर दूसरी करते हैं, रुख करते हैं दूसरी खबर का जो आ रही है यूरोप से। यूरोपीय संघ ने कहा है कि प्रवासी समस्या को सुलझाने के लिए तुर्की के साथ किया गया समझौता कामयाब होता दिख रहा है। तुर्की ने कहा कि अब इसके बदले यूरोपीय संघ को तुर्की के नागरिकों के लिए बगैर वीजा आने की सुविधा फौरन लागू करनी चाहिए। जर्मन चांसलर अंगेला मर्केल यूरोपीय संघ के अधिकारियों के साथ तुर्की के दौरे पर गई हैं। पूरे ब्यौरे के साथ प्रभात पांडे।
जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के साथ तुर्की के कई प्रवासी कैंपों का दौरा करने के बाद यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने प्रवासियों की हालत पर संतोष जताया। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क के मुताबिक मार्च में तुर्की के साथ किया गया समझौता रंग दिखाने लगा है। इस समझौते का लक्ष्य इराकी और सीरियाई शरणार्थियों को तुर्की से ग्रीस आने से रोकना था। ग्रीस यूरोपीय संघ का सदस्य है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड टस्क ने कहा,
Today, Turkey, and it's not only a political and formal assessment, this is also my very private personal feeling.
आज मैं कहना चाहता हूं कि तुर्की ने दिखा दिया है कि शरणार्थियों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, और ये मेरा राजनीतिक और औपचारिक आकलन ही नहीं बल्कि निजी आकलन भी है। अब किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो तुर्की को बताए कि उसे क्या करना चाहिए। ये थे यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क के शब्द। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावूतुलू ने कहा कि अब समझौते के मुताबिक तुर्की के नागरिकों के लिए यूरोपीय संघ के देशों की यात्रा वीजा फ्री करने का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा,
The most important issue is the implementation of the readmission agreement, and with that, hopefully,
सबसे अहम बात तो ये है कि अब समझौते को पूरी तरह से लागू होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि जून तक वीजा नियमों में ढील दी जाएगी, और ये तुर्की के लोगों से किया गया हमारा वादा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस संबंध में जरूरी प्रस्तावों को हम अपनी संसद में पास करा लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि यूरोपीय संघ भी हमें इस दिशा में सकारात्मक जवाब देगा। ये थे तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावूतुलू के शब्द। तुर्की और यूरोपीय संघ के बीच हुए इस समझौते के तहत 20 मार्च के बाद से वो सभी प्रवासी जिनका दावा खारिज कर दिया गया है उन्हें ग्रीस से वापस तुर्की जाना होगा। हालांकि मानवाधिकार संगठन इस समझौते का विरोध कर रहे हैं और तुर्की को प्रवासियों के लिए असुरक्षित देश बता रहे हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे प्रभात पांडे। और आइए आगे बढ़ने से पहले अखबारों की समीक्षा कर लेते हैं। प्रभात अखबारों पर नजर डालने के बाद स्टूडियो पहुंच चुके हैं। बताइए क्या है आज की खबरों में।
जी निखिल, अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का जो यूरोपीय दौरा है वो अखबारों के हेडलाइन बना हुआ है। बराक ओबामा कल ब्रिटेन में राजसी परिवार से मिले, और वहाँ पर उनकी एक बड़ी अच्छी तस्वीर है। प्रिंस विलियम और केट मिडिल्टन के बेटे, 3 साल के जो बेटे हैं नन्हे प्रिंस, उनसे मुलाकात की एक बड़ी अच्छी तस्वीर है, आप भी देख पा रहे होंगे। तो ये अखबारों की सुर्खियाँ छाई हुई, सोशल मीडिया पर भी ये कल तस्वीर ये काफ़ी वायरल हुई थी, तो ये तस्वीर छाई हुई है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमर उजाला में जो महाराष्ट्र सरकार है उसने जो बीजेपी सांसद हैं हेमा मालिनी, तो आरोप है कि ओशिवारा में, जो कि एक काफ़ी पॉश एरिया माना जाता है, वहां पर 70 करोड़ रुपए की कीमत की ज़मीन हेमा मालिनी को सिर्फ 2.25 लाख रुपए में, 1,75,000 रुपए में देने का आरोप है।
ये कुछ दिन पहले जो विवाद उठा था वही
ये वही मामला है। और यहाँ पर डांस अकादमी हेमा मालिनी की डांस अकादमी खोलने के लिए इस भूखंड को दिया गया है, तो इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल हुआ और हेमा मालिनी की काफ़ी आलोचना हो रही है, लेकिन अभी सरकार इस निर्णय पर जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा मैं आपको द हिंदू की खबर बताना चाहूँगा कि जो हीट वेव कंडीशंस टू परसिस्ट टिल अप्रैल 27 तक, ये जो प्रचंड लू चल रही है, गर्मी की लहरें, इनसे आज़ाद छुटकारा मिलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा ढाका में एक प्रोफेसर की हत्या कर दी गई है, प्रोफेसर AFM रेजुल करीम सिद्दीकी, 58 साल की, इनकी हत्या कर दी गई है, ये भी खबर छाई हुई है। हालांकि इस खबर पर काफ़ी, इस हत्या पर काफ़ी आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि ये सिद्दीकी साहब, इनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है कि ये इन्होंने कोई ईश निंदा की थी या इस्लाम के खिलाफ कोई बात की थी। इसके अलावा दैनिक जागरण में खबर छपी है कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय ने माना है कि इस दफ़ा का जो ऑड इवन है वो उतना कामयाब साबित नहीं हो रहा है, उन्होंने इनडायरेक्ट संकेत दिए।
काफ़ी ट्रैफिक जाम की समस्या
है और ये भी उन्होंने कहा कि इस बार स्कूल खुले हुए हैं, तो जो स्कूल की बसें और स्कूल के छात्रों के लिए जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं उसको लेकर, उस वजह से और गर्मी की वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए ऑड इवन इस बार कामयाब होता नहीं दिख रहा है। तो ये सब खबरें छाई हुई हैं।
बहुत शुक्रिया।
इसके अलावा मैं एक और छोटी सी खबर आपको बताऊंगा कि फिल्म स्टार सलमान खान को ओलंपिक के लिए भारत की ओर से गुडविल एम्बेसडर चुना गया
जी
है।
मैं उसी खबर पर आ रहा था। भारतीय ओलंपिक संघ ने जब सलमान खान को रियो ओलंपिक का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपने देश की तरफ से, गुडविल ब्रांड एम्बेसडर, तो ये ऐलान कल दिल्ली में हुआ, इसकी बाकायदा घोषणा हुई और इस दौरान वहाँ हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त भी मौजूद थे, तो जरा उनकी ये रिपोर्ट सुनिए।
एक होता ना, एक आदमी पीछे से धक्का मारने और सपोर्ट करने वाला, आई मे अचीव इट आई मे नॉट अचीव इट, वो ओनली ऊपर वाला नोस, बट आई जस्ट वांट टू बी दैट के एक धक्का मारो धीरे 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 फॉर एवरीवन टू जस्ट टू एक्सेल एंड टू डू बेटर।
ये शब्द थे जाने माने फिल्म स्टार सलमान खान के, जो कल दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ के एक समारोह में रियो ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर बनाए गए। इस समारोह में रियो ओलंपिक में जगह बनाने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह, महिला हॉकी टीम की कप्तान रितु रानी, महिला निशानेबाज अपूर्वी चंदेला और महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनिका बत्रा के अलावा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एन रामचंद्रन और महासचिव राजीव मेहता भी शामिल थे। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज MC मैरीकॉम भी वहां मौजूद थी, हालांकि उन्हें रियो का टिकट हासिल करना है।
अभी प्रेशर ज्यादा मत दे दो, क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन बाकी है, मेन वर्ल्ड चैंपियनशिप इज इन मई, सो आई वांट टू फुल फोकस एंड टू क्वालिफाई।
वैसे अधिकतर समय सलमान खान से ही सवाल जवाब होते रहे, सलमान खान ने भी संभल कर ओलंपिक खेलों को लेकर जवाब दिए।
मेरे इंटरेस्ट दिखाने से कुछ नहीं होता, अगर मेरे इंटरेस्ट दिखाने से अवेयरनेस नहीं बढ़ता ओलंपिक्स के बारे में तो मुझे नहीं लेते। हम लोग दाल चावल और रोटी पर, वो भी एक आध दो मील के अंदर, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस दिन ये स्पोर्ट ज्यादा लोग देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, ये गुरबत से आते हैं जो उनको सपोर्ट मिलेगा फाइनेंशियली, न्यूट्रिशन का, प्रोटीन वोटीन वगैरह ये सब मिला के, आई थिंक वी विल गेट अ लॉट मोर मेडल्स देन वी हैव बीन गेटिंग नाउ।
जब सलमान खान चले गए तो उनके साथ ओलंपिक संघ के पदाधिकारी भी चले गए, रह गए खिलाड़ी जो बदइंतजामी का शिकार हो गए। जैसे तैसे मैरी कॉम जवाब देकर चली गई तो बाकी पत्रकार उनकी तरफ दौड़े, क्योंकि इस बीच वो दूसरे खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे थे। हालत एक अनार सो बीमार जैसी थी, तभी वहाँ शोर मचने लगा। जब ऐसा शोर मचा तो खिलाड़ी भी मौका पाकर खिसक लिए। बाहर अचानक भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रितु रानी अपनी कार का इंतजार करते दिखाई दी।
कंटिन्यूसली 4 मंथ हो गए हम लोग वहीं पे हैं कैंप में, हमें कोई ब्रेक भी नहीं मिला। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कोई कमी ना छोड़े ओलंपिक्स में।
रितु रानी से बातचीत करने के बाद मन में एक ही बात आ रही थी कि काश भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारी खिलाड़ियों से भी ढंग से बातचीत करा देते तो बेहतर होता।
ये थे आदेश कुमार गुप्त, और जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ ने सलमान खान को रियो ओलंपिक का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाया और इस बात का काफ़ी विरोध हो रहा है। मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त ने बाकायदा इस पर ट्वीट किया और उसके बाद से एक लंबी बहस का सिलसिला शुरू हो गया है सोशल मीडिया पर, और प्रभात पांडे ने इस पर नज़र रखी है। प्रभात हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रभात, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, सलमान खान का विरोध क्यों हो रहा है?
जी निखिल, सलमान खान जो कि जिनकी आने वाली फिल्म है सुल्तान, उसमें वो रील लाइफ में पहलवान बने हुए हैं, तो जैसे ही इस रील लाइफ पहलवान को ओलंपिक के लिए भारत का गुडविल एम्बेसडर बनाने का ऐलान हुआ, तो जो रियल लाइफ के पहलवान हैं, असली पहलवान योगेश्वर दत्त, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने बड़े गुस्से में एक ट्वीट किया कि एम्बेसडर का क्या काम होता है, कोई मुझे बता सकता है, क्यों पागल बना रहे हो देश की जनता को। उन्होंने ये एक बड़े गुस्से में ट्वीट किया। ये ट्वीट उन्होंने सलमान खान के नाम की घोषणा के चंद घंटों बाद ही किया। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया कि पीटी उषा, मिल्खा सिंह जैसे बड़े हमारे महान खिलाड़ी हमारे पास हैं जिन्होंने कठिन समय में देश के लिए मेहनत की, उनको छोड़कर इन्हें एम्बेसडर बनाया गया, खेल के क्षेत्र में इस एम्बेसडर ने भला किया क्या है। उन्होंने एक और ट्वीट किया, यही नहीं रुके, एक और ट्वीट किया कि कहीं भी जाकर अपनी मूवी का प्रमोशन करें, उनका अधिकार है, लेकिन ओलंपिक फिल्म प्रमोशन की जगह नहीं। एक के बाद एक तीन ट्वीट किए उन्होंने, काफी गुस्से में थे।
क्या वो ये मान रहे थे कि मतलब ये सुल्तान के प्रमोशन के लिए ये किया गया है?
जी हाँ, उनके ट्वीट से यही संकेत लगा, और वो ये चाह रहे थे कि किसी खिलाड़ी को अगर ब्रांड एम्बेसडर या गुडविल एम्बेसडर बनाया जाता तो
मतलब एक स्वाभाविक वो होती है।
तो उसके बाद से जैसे ही योगेश्वर ने ये किया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहस ही छिड़ गई। सलमान खान के जो प्रशंसक हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और कई ने तो ये आरोप लगा दिया कि योगेश्वर दत्त सलमान खान के बहाने अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता योगेश्वर को इसकी जरूरत है। और कई लोगों ने सलमान खान का पक्ष लिया, समर्थन किया, लेकिन योगेश्वर के पक्ष में भी कई लोग खड़े नजर आए।
एक ट्वीट कोई पढ़ दीजिए।
एक बड़ा मुझे बहुत ही वो लगा, एक प्रतीक सोशल ट्विटर यूजर है, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सलमान वाकई खेल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनका निशाना बड़ा अचूक है। अब आप समझ जाइए कि उन्होंने किस तरफ इशारा किया।
बहुत शुक्रिया प्रभात, आपकी बातों को थोड़ा और देर कंटिन्यू करते लेकिन समय नहीं है, और आज हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम न्यूज मेकर्स भी होता है, तो आज इसमें भी एक खिलाड़ी की ही बारी है। त्रिपुरा की 22 साल की दीपा कर्माकर ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिमनास्ट बन गई है। उन्होंने ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट में 52.698 अंक हासिल कर रियो का टिकट हासिल किया। ये 52 साल के बाद पहला मौका होगा जब भारत का कोई एथलीट ओलंपिक में जिमनास्टिक की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगा। हमारे सहयोगी विदित मेहरा ने उनसे बात की है, आइए सुने ये बातचीत।
इससे बड़ी कोई बात नहीं होती कि आप अपने देश का नाम रोशन करें और उस देश का हर नागरिक आपकी वाहवाही करे। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ हैं ऑन बीबीसी न्यूज मेकर्स। एज आई सेड, आज हमारे साथ हैं 22 साल की जिमनास्ट दीपा कर्माकर, जो कि एक्चुअली हैं भारत की पहली विमेन जिमनास्ट जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए। हमने उनसे ये बातचीत की सीधा रियो में। बीबीसी न्यूज मेकर्स में सबसे पहले तो दीपा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है रियो में, पहले ये बताइए आप मुझे।
अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा।
आप पहली भारतीय महिला बनी है जिसने क्वालिफाई कर लिया है, कैसी फीलिंग है और क्या क्या आपको लग रहा है, प्रेशर फील कर रहे हो आप?
नहीं, ऐसे कुछ प्रेशर नहीं है, अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जिमनास्टिक्स के लिए बहुत अच्छा है कि कोई ऐसे एक पोडियम पे पहुंचे।
प्रोदुनुवा वॉल्ट एक बहुत फेमस वॉल्ट है जो आप करती हैं, और जरा उसके बारे में बताइए, कितनी मतलब कितने लोग करते हैं पूरे विश्व में प्रोदुनुवा वॉल्ट?
पूरे वर्ल्ड में ये 5 ही लोग करते हैं सिर्फ, और 5 में से मैं वो तीसरी लड़की हूँ जिसने इस वॉल्ट में लैंड आया। और ये वॉल्ट सीखने के लिए मुझे, मैं सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ, पहले तो मेरा कोच है, उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, क्योंकि उन लोगों ने जो फोम पिट बनाया था उसके वजह से मैं ये वॉल्ट सीख पाई। IG स्टेडियम में दिल्ली में जो फोम पिट बनाए, तो उसके वजह से वो फोम पिट की वजह से मैं सीख पाया, तो उन लोग को बहुत बहुत थैंक यू।
कैसी फीलिंग अंदर आई, क्योंकि इतने सारे भारतीय हैं, आपने उन सब का सर ऊंचा कर दिया, क्या लग रहा था और कोच साहब ने सबसे पहले आपके कान में क्या बोला था?
हाँ, वो मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी कि मैं क्वालिफाई कर लिया, और फिर मेरा कोच भी बहुत खुश था क्योंकि मैं वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा दे पाई। मेरा चारों इवेंट में अच्छा गया उस दिन, पहला दिन कॉम्पिटिशन, फिर वो सब भारतवासी के पूरा आशीर्वाद से फिर अपना जिम्नास्टिक्स फेडरेशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, त्रिपुरा जिम्नास्टिक्स एसोसिएशन, त्रिपुरा गवर्नमेंट, उन सबको मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर उन लोगों के हेल्प के बिना मैं इधर आ ही नहीं पाती, तो इनको बहुत बहुत थैंक यू।
सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको कौन से देशों से लग रहा है, किन से आपकी भिड़ंत होगी और आपको लगेगा कि कांटे की टक्कर हो सकती है मेरी उनके साथ?
यूएसए, रशिया, चाइना, उन लोगों का है, वो सब ओलंपिक में फाइनल पोडियम पे, तो उन लोगों के साथ कंपटीशन है।
कौन सी फीमेल एथलीट आपको लगता है कि टक्कर उनसे होगी, एथलीट जिनके नाम, मतलब अगर आप नाम बता पाए तो हमें?
सिमोन वाइल्स, मारिया पासिका, गुलिया स्टीनबर्गर, डीपीआर कोरिया एक है, उन लोगों से।
घर में कैसा माहौल है आपके यहाँ पे त्रिपुरा में?
बहुत अच्छा माहौल है, घर में सब खुश है।
सचिन तेंदुलकर ने आपको ट्वीट करके बधाई दी है, कैसा लग रहा था आपको?
एक्चुअली मुझे पता चला तो बहुत अच्छा लगा, सचिन तेंदुलकर और फिर पीएम ने, फिर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, फिर बहुत लोग, सबको मैं बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। बस मुझे वो करे कि आगे भी मैं इस ओलंपिक वाला पोडियम पे भी अच्छा कर पाऊँ।
और अभी तक डाइट कंट्रोल चल रही है आपकी, आप डाइट कंट्रोल करके चल रही हैं?
वो तो अभी और ज्यादा करना पड़ेगा ना भैया, अभी तो बड़ा पोडियम है, ऐसे अभी सेम ही रूटीन है।
अभी सेम ही रूटीन है तो क्या, अभी जैसे कोच साहब से मेरी बात हुई थी आपके, तो वो बता रहे थे कि कभी कभी तो वो इतना कर देते हैं कि आप बोलते हैं अरे बस करो, मैं मतलब इंसान हूँ। क्या अब आपको लग रहा है कि उसका नेक्स्ट लेवल आने वाला है रियो ओलंपिक्स की प्रैक्टिस में?
हाँ, उससे ज्यादा आने वाले
ओलंपिक्स में देखने, ओलंपिक्स में आपका खेल देखने के लिए क्या आपके माँ बाप भी आने वाले हैं?
नहीं नहीं, वो लोग टीवी में देखेगा।
टीवी में देखेगा, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि वो भी आपका वहाँ पे देखने आ जाए इवेंट?
नहीं, एक्चुअली मेरा कोच साथ में रहना तो ही, मतलब वही सब है, वही ठीक है, उसमें पेरेंट्स आने की कुछ ऐसा कुछ नहीं है।
अच्छा, अगर पेरेंट्स आ गए तो क्या आप नर्वस हो जाएंगी, ये बताइए?
नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं पेरेंट्स आने से, क्योंकि करना है मुझे, साथ में मेरा कोच है, बस वही ठीक, ऐसे नहीं कि वो लोग नहीं, क्योंकि मेरा दादी भी है घर में इसीलिए।
और अब बात करेंगे दीपा के कोच बिस्वस्वर नंदी से। नंदी जी कैसे हैं आप?
बस फाइन हूं।
आपने दीपा को एक इतने अच्छे गेम में आगे लेके आए, आपका पूरा सहयोग था, कैसा लगा आपको जब दीपा ने क्वालिफाई किया रियो ओलंपिक्स के लिए?
दीपा का मेहनत है, साथ में मैंने उनको गाइड किया है। हाँ, ये सही है, मैं उसके साथ आज 15-16 साल से उसके पीछे लगा हुआ हूँ। मेरा कोशिश यही था कि बहुत साल पहले हमारा जिम्नास्टिक में ओलंपिक में गया था कुछ लड़के लोग, तो मेरा कोशिश ये है कि क्यों ना एक लड़की को हम कोशिश करें ओलंपिक तक पहुंचाने के लिए। तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप से ही मेरा टारगेट था कि हर हालत में देखता हूँ होता है क्या नहीं, पूरा कोशिश करना है। तो कोशिश करते करते, मतलब ये आपको तो मालूम है वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद वो रिजर्व में थे, तो रिजर्व से वो अभी आ गया, मतलब टेस्ट इवेंट के लिए सिलेक्ट हो गया, टेस्ट इवेंट पे ले आया। फिर एक टेंशन था बहुत, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो फुल कर पाएगा क्या नहीं, क्योंकि ऑलराउंड का मामला है, एक अपैरेटस का मामला नहीं है। फिर उसको बस ट्रेन करते रहा, उसको मोटिवेट करते रहा कि बस तुम प्रैक्टिस जैसा करना है, थोड़ा सा हार्ड प्रैक्टिस करो और कंपटीशन में बिल्कुल बिंदास एंजॉय होके करना है।
तो ये थे बीबीसी न्यूज मेकर्स पर दीपा कर्माकर और उनके कोच बिस्वस्वर नंदी,
और उनसे बात कर रहे थे विदित मेहरा। और अब कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा का विरोध किया है और बंद का आह्वान किया है। ब्रिटेन की यात्रा पर पहुंचे अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बीबीसी से कहा कि अगर ब्रिटेन यूरोपीय संघ छोड़ता है तो उसे अमरीका के साथ व्यापारिक समझौते करने में दसियों साल लग सकते हैं। उत्तर कोरिया ने कहा है कि अगर अमरीका दक्षिण कोरिया में अपने सालाना सैन्य अभ्यास को बंद कर दे तो वो अपने परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा देगा। उत्तर कोरिया का ये बयान तब आया जब इसने पनडुब्बी से एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इक्वेडोर के राष्ट्रपति राफाइल कोरेया ने कहा है कि एक सप्ताह पहले आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या 646 हो गई है। राष्ट्रपति के मुताबिक 130 लोग अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा लोगों को मलबे से जिंदा बचा लिया गया है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीरिया में एक बार फिर तेज होते संघर्ष पर चिंता जाहिर की है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही, एक घंटे बाद विश्व भारती में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज स्टूडियो संभाल रहे हैं देवाशीष कुमार, प्रभात पांडे और निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।